अनदेखे जज्बात। आस्था को इस तरह खामोशी से जाते हुए देखकर अरमान को कुछ अजीब सा लगने लगा। कहीं ना कहीं उसने सोचा था कि आस्था कोई नया नाटक करेगी या अंश के साथ रहने के लिए कोई बहाना बनाएगी ताकि वो अरमान के करीब आ सके। लेकिन ये क्या, ये तो अंश को छोड़कर सीधे बाहर चली गई। उसे ऐसे देखकर अरमान का दिल हैरानी और आश्चर्य से भर गया। अब आगे उसके दिल में एक पल के लिए हल्का सा गिल्ट सा आया। उसे लगा काश आस्था उससे थोड़ी बहुत बात कर लेती या शिकायत करती, क्योंकि अरमान ने उसे बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन आस्था ने उसे अब तक एक शब्द भी पलटकर नहीं बोला था। उसकी ये खामोशी अरमान को बहुत परेशान कर रही थी। अरमान को ऐसा लग रहा था जैसे भीतर से उसके दिल को कोई खींच रहा हो। अचानक उसकी नज़र अपने मासूम बच्चे पर पड़ी, जिसे देखकर अरमान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो अंश के पास लेट गया और उसके नन्हे मुलायम हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे छूते हुए वो फिर धीरे धीरे नींद वादियों में खो गया। उधर आस्था की आंखों में नींद नहीं थी। वो पूरी रात इसी तरह बेचैन होकर इधर उधर करवट बदलती रही। अरमान का बिहेवियर उसे बहुत परेशान कर रहा था। आस्था चाहती तो अरमान को एक झटके में सारा सच बता सकती थी कि असल में वो अविनाश रघुवंशी बहन है और रघुवंशी एम्पायर की आधी मालकिन। इंडिया में जो भी बिजनेस रघुवंशी परिवार का है वो सब उसके नाम पर है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बल्कि इस मामले में वो अरमान से कहीं ज्यादा अमीर है। लेकिन आस्था अपने पति के सामने पैसों की ताकत दिखाकर उसे नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। उसे डर था कि अगर अरमान की यादें वापस नहीं आईं तो क्या वो फिर से उसके दिल में जगह बना पाएगी? क्या अरमान उसे पहले जैसा प्यार करेगा? अरमान की बातें अब उसके लिए सहना मुश्किल हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उनका दिल भींचा था हो। वंशिका ने उसे मेल करके बताया था कि प्रोफेसर एंटीडोट पर काम पूरा कर चुके हैं और अब उनका मिशन कम्प्लीट होने वाला है, इसलिए कल सुबह उन्हें एंटीडोट लेने के लिए निकलना होगा। आस्था ने मन बना लिया था कि अब वो खुद जाकर सीधे एंटीडोट के बारे में सच्चाई पता करेगी, क्योंकि वो इस तरह से अपने पति पर कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहती थी। वरना उसने तो सोचा था बस एक बार राजवीर के बारे में पता चल जाए, फिर चाहे उसे अपनी जान जोखिम में क्यों न डालकर ही वो एंटीडोट चुरानी पड़े, वो हर हाल में वो एंटीडोट चुरा कर ले आएगी। अपने पति के लिए वो कुछ भी कर गुजरेगी। फिलहाल इन्हीं उलझनों में कब आस्था की आंख लग गई थी उसे एहसास ही नहीं रहा। अगली सुबह आस्था जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गई थी। वो अच्छे से जानती थी कि अरमान अगली सुबह अंश को संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि सुबह सुबह ही अंश को फ्रेश होना होता था, साथ साथ वो दूध भी पिया करता था, तो अरमान अंश को लेकर जरूर परेशान हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था उसे आवाज लगाने का इंतजार कर रही थी। लेकिन आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि ऑलरेडी अरमान ने नौकरों के जरिए अंश का सारा काम करवा दिया था, क्योंकि आस्था की आदत वो जल्द से जल्द छुड़ाना चाहता था। फिलहाल अरमान आराम से तैयार होकर अंश को लेकर नीचे आ रहा था। सब लोगों की ओर देखते हुए उसके मन में यही बात भी चल रही थी, इन लोगों को क्या लगा कि अरमान सिंघानिया अपने बेटे का ध्यान नहीं रख सकता? मेरे बेटे को किसी औरत की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो औरत उसकी माँ ही क्यों ना हो। कहीं ना कहीं अरमान अपने इसी एटीट्यूड में था। फिलहाल आस्था ने नम आंखों से अपने बेटे को प्यार भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। तभी अचानक आहान शरारती मुस्कान लिए वहां आया और आस्था के कंधे पर हाथ रखकर बेपरवाही से बोला, मेरी प्यारी भाभी जरा सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वहीं अरमान जानलेवा नजरों से आहान के उस हाथ को एकटक देखे जा रहा था जो उस वक्त उसने आस्था के कंधे पर रखा हुआ था। जाने क्यों, लेकिन अरमान को आहान की यह हरकत बहुत बुरी लग रही थी। वहीं आहान को भी अपने आसपास अचानक ठंड का एहसास हुआ, शायद अरमान की सर्द नजरों के कारण। उसने तुरंत टेढ़ी नजरों से अरमान की ओर देखा तो उसकी सिटी गुम हो गई और उसने झट से अपना हाथ आस्था के कंधे से हटा लिया। वहीं ध्रुव, आकाश और सुमित आहान की घबराई हालत अपनी आंखों से देख रहे थे और अनजान बनते हुए मुस्कुरा भी रहे थे। ध्रुव तुरंत आहान के पास आया और उसकी चिटकी लेते हुए बोला, तुझे क्या लगा अरमान भाई की यादें चली गई हैं, तो क्या वो इस तरह से अपनी बीवी पर किसी का भी हाथ बर्दाश्त कर सकता है? नो, नेवर, बिल्कुल भी नहीं। भले ही इस वक्त वो आस्था भाभी को अपनी बीवी ना माने, लेकिन उनके दिल में आज भी भाभी के लिए फीलिंग्स हैं और ये बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अरमान भाई आस्था भाभी के लिए कितना ज्यादा पोजेसिव है। ध्रुव की इस बात पर आहान ने अपना थूक गटक लिया और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, हाँ हाँ यार, मैं अच्छी तरह से ये बात जानता हूँ, तभी तो मेरे पास एक धांसू आइडिया आया है। फिर आहान ने आस्था की ओर एकदम से देखा और शांत आवाज में कहा, भाभी आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है। अब जैसे ही आहान ने ये बात अरमान के सामने कही तो अनजाने में अरमान ने आईब्रो से कोड़ी। उसने एकदम से सोचा, आखिर आहान को इस लड़की से क्या काम हो सकता है? आज से पहले तो ये अपने सारे काम मुझसे आकर बोलता था, तो आज उसे इस लड़की से इस तरह बोलने की क्या जरूरत है? हाँ। तभी दादाजी अंश को देखकर मुस्कुराए, फिर उसे लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अरमान ने अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें आगे आने से रोक लिया और बिना किसी हिचक के जवाब दिया, दादाजी अंश मेरे साथ ऑफिस जाएगा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अरमान के शब्द किसी धमाके की तरह थे। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा तो ये सुनते ही उन सब की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई थीं। सब एकदम से ठिठक गए, क्योंकि अरमान तो अंश को एक पल के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं था और ऊपर से वो इतने छोटे बच्चे को ऑफिस लेकर जाने की भी बात कर रहा है। सब परेशान होकर सोचने लगे, भला दूध पीता बच्चा ऑफिस जाकर क्या करेगा? दादाजी अब और खुद को रोक नहीं पाए और गुस्से से चीखते हुए बोले, अरमान तो पूरी तरह नालायक और पागल हो गया है। वो छोटा सा बच्चा है और वो अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा, तो इतने छोटे बच्चे को ऑफिस कैसे लेकर जा सकता है। दादाजी के मुंह से ये सवाल सुनकर अरमान कुछ नहीं बोला, लेकिन वो दादाजी को घूरे जा रहा था। नानी माँ भी अरमान से काफी ज्यादा खफा थी, क्योंकि उसने जिस तरह की बातें आस्था को सुनाई थी उसकी बेइज्जती की थी, इसलिए वो भी अरमान से ढंग से बात नहीं कर रही थी। तभी आकाश सिचुएशन को भांपते हुए आगे आया और धीमी आवाज में अरमान को समझाते हुए बोला, अरमान अंश बहुत छोटा है, तुम उसे इस तरह ऑफिस नहीं ले जा सकते, उसे अपनी माँ की जरूरत पड़ सकती है। जिस पर अगले ही पल अरमान ने मुस्कुराते हुए बेफिक्र अंदाज में जवाब दिया, नहीं मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं, और वैसे भी इसको अपनी माँ के बिना रहने की आदत डालनी होगी, ये मेरा बेटा है और ये अपने आप को संभाल सकता है और हमें अपनी जिंदगी में किसी औरत की कोई जरूरत नहीं है। अरमान ने जैसे एक बार फिर ये जताते हुए कहा तो आस्था को लगा जैसे अरमान के चलाए गए शब्द तीर उसे घायल करते जा रहे थे। आस्था का दिल पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया था, लेकिन उसने अपनी आंखों में एक कतरा आंसू नहीं आने दिया और मजबूती से खड़ी रही। ठीक उसी वक्त आहान और रौनक ने आस्था का एक एक हाथ पकड़ लिया, साथ ही राधिका, रश्मि और वंशिका सब आस्था को आंखों ही आंखों में तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ठीक उसी समय अरमान एक बार फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला,
मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और अब कोई भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेगा, और ये लड़की, उसने आस्था की ओर इशारा किया, मुझे अपने बेटे के आसपास नहीं दिखनी चाहिए। ये तब तक मेरे बेटे के आसपास है जब तक वो फीड करता है। जैसे ही वो फीड करना छोड़ देगा, इस लड़की का उस दिन इस घर में आखिरी दिन होगा। ये कहकर अरमान दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन अरमान का ये फैसला सुनते ही वहां की हवा जैसे ठहर सी गई। सबके कानों में अरमान के शब्द किसी हथौड़े की तरह गूंज रहे थे, जिसे सुनकर दादाजी और बाकी सबका दिल धक सा रह गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान इस तरह का कोई फैसला कर सुनाएगा। अंश को तो वो किसी को छूने भी नहीं दे रहा था, और आस्था को तो बिल्कुल भी नहीं। उसका मन था कि कोई भी औरत उसके बेटे के आसपास भी ना भटके। सभी को आस्था के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वहीं आस्था, जो कब से अपने बेटे को गले से लगाने के लिए बेताब थी, साथ ही वो अपने पति को भी गले लगाना चाहती थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया एक मिनट के लिए ठहर गई हो। उसकी उंगलियां तनाव में आपस में उलझी हुई थीं, क्योंकि उसका पति और उसका बेटा दोनों ही उससे दूर जा रहे थे, जिसमें उसकी जान बसती है। लेकिन इससे पहले कि अरमान अंश के साथ बाहर जा पाता, ठीक उसी वक्त कई सारे बॉडीगार्ड्स अंदर आने लगे। ये देखकर सभी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। सब एक दूसरे को आश्चर्य से देखकर पूछने लगे, ये सब क्या हो रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, इतने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ सुबह सुबह यहाँ कौन आ सकता है। और तभी बॉडीगार्ड्स के पीछे हाथ में फूलों का बुके लिए एक बड़ी ही कमाल की शख्सियत दरवाजे पर खड़ी हुई थी, जिसे देखकर अरमान सिंघानिया की आंखें तीखी हो गईं। वहीं आहान के होठों पर जीत की मुस्कान थी, क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि अबीर सिंह राठौड़ खड़ा था। अबीर को वहां देखकर अरमान की आंखें गुस्से और नफरत से लाल हो गईं। वो अबीर को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन यादें जाने के बाद उसके और अबीर के बीच सुलह वो सब कुछ भूल चुका था। अब अबीर सिंह राठौड़ भारी कदमों से जैसे ही वहां आया, वैसे ही उसने तुरंत जाकर अंश और अरमान दोनों को एक साथ गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोला, हाय अरमान, कैसे हो तुम। अब जैसे ही अबीर ने एकदम फ्रेंडली अंदाज में ये कहा, तो वैसे ही अरमान की आंखें शौक से खुली की खुली रह गईं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जब भी वो और अबीर एक दूसरे से मिला करते थे तो एक दूसरे पर बंदूक तान दिया करते थे। लेकिन ये क्या, आज अबीर अरमान के घर आकर सीधा उसे गले से लगा रहा है और मुस्कुराकर उसका हालचाल पूछ रहा है। ये देखकर तो अरमान की आंखें हैरान रह गईं। एक पल के लिए उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए, और अगले ही पल अरमान ने अबीर को खुद से थोड़ा दूर धकेला और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। इस पर अबीर ने सीधे कहा, मैं तो यहाँ तुमसे, साथ ही अपने क्यूट से अंश और अपनी बटरफ्लाई से मिलने के लिए आया हूँ। अबीर ने अरमान को बस एक सपाट सा जवाब दिया और बात अधूरी छोड़ दी, और आगे बढ़कर अंश के गालों को प्यार से छुआ। फिर आस्था की ओर मुड़कर हल्का सा झुकते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बटरफ्लाई। फिर वो फूलों का गुलबस्ता आस्था की ओर बढ़ाते हुए बोलता है, ये खूबसूरत फूल इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए। ये बोलते हुए अबीर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वहीं अबीर का ये अंदाज देखकर अरमान की आंखें गुस्से से फटने को तैयार थीं। आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी सिर्फ